नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रख्यात वकील वज्जवल देव राव निकम, सामाजिक कार्यकर्ता सदानंदन मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला और इतिहासकार एवं शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को राज्यसभा में किया मनोनीत। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सिंगापुर और चीन की 3 दिन की यात्रा आज से शुरू। कैप्टन शिवांशु शुक्ल और एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी यात्रा कल से होगी शुरू। पोलैंड की इगा स्वियातेक ने पहली बार विंबलडन का पहला सिंगल्स खिताब जीता। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रख्यात वकील उज्जवल देव राव निकम, सामाजिक कार्यकर्ता सदानंदन मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला और इतिहासकार एवं शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को राज्यसभा में मनोनीत किया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इस निर्णय की जानकारी दी। महाराष्ट्र के रहने वाले श्री निकम मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में सरकारी वकील रह चुके हैं। केरल के सदानंदन मास्टर का शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री श्रृंखला अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सुश्री जैन दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात वकील उज्जवल देव राव निकम, सामाजिक कार्यकर्ता सदानंदन मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला और इतिहासकार तथा शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्री मोदी ने कहा कि उज्जवल निकम का संविधान और कानून के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान है। वहीं हर्षवर्धन श्रृंगला का सफर एक राजनयिक, बौद्धिक और रणनीतिक विचारक के रूप में सराहनीय रहा है। सदानंदन को बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनका पूरा जीवन समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अन्याय के समक्ष कभी अपना सिर नहीं झुकने दिया। श्री मोदी ने कहा कि मीनाक्षी जैन ने एक शिक्षाविद, विद्वान और इतिहासकार के रूप में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। सिंगापुर की यात्रा पर गए विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विवियन बालाकृष्णन ने कहा कि जैसे जैसे दुनिया बहुध्रुवीय होती जा रही है, भारत इन प्रमुख ध्रुवों में से एक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिंगापुर की अपनी यात्रा के बाद विदेश मंत्री संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए चीन के तियानजिन जाएंगे। बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। इस दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों की बड़ी संख्या में पहचान की गई है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार ये लोग आधार, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और अन्य सभी दस्तावेज हासिल करने में सफल रहे हैं। आयोग के अनुसार 1 अगस्त से 30 अगस्त तक चलने वाले जांच के बाद ऐसे लोगों के नामों को इस वर्ष 30 सितम्बर को जारी होने वाले अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। विश्व की 4th नंबर की टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियातेक ने पहली बार विंबलडन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। लंदन में एक तरफा मुकाबले में उन्होंने 13वीं वरीयता प्राप्त अमंडा अनिसिमोवा को 6-0, 6-0 से हरा दिया है। यह स्वियातेक का पहला 6ठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल फाइनल में आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला स्पेन के कार्लोस अल्काराज से होगा। यह मैच रात 8:30 बजे खेला जाएगा। अल्काराज ने सेमीफाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्स को और सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया था। ब्रिटेन की जूलियन कैश और लॉयड क्लासपूल ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। वर्ष 1936 के बाद विंबलडन का खिताब जीतने वाली यह पहली ब्रिटिश जोड़ी है। जूलियन और ग्लासपूल ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के रिंकी हिजिकाटा और नीदरलैंड के डेविड बेल को लगातार सेट में 6-2, 7-6 से पराजित किया। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू हो गया है। यह पुरस्कार युवाओं में चुनौतीपूर्ण माहौल में एडवेंचर, जोखिम लेने के साहस, टीम भावना से काम करने की प्रवृत्ति और क्विक रिफ्लेक्स में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार भूमि, हवा और जल में एडवेंचर के अलावा एडवेंचर के क्षेत्र में जीवन भर की उपलब्धि के लिए भी दिया जाता है। इसे अर्जुन पुरस्कार के साथ साथ प्रदान किया जाता है। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप 15,00,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार के लिए नामांकन निर्धारित वेबसाइट awards.gov.in पर इस महीने की 15 तारीख तक किए जा सकेंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री और कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने कल श्रीलंका में अनुराधापुरा में 90 आवासों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री अमरसूरिया ने वंचित समुदायों के उत्थान के लिए भारत की सहायता के प्रति आभार व्यक्त किया। उच्चायुक्त श्री संतोष झा ने बताया कि भारत सरकार श्रीलंका में रेलवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भी सहायता दे रही है। ये आवास भारत की सहायता से श्री शोभित नाहिमिगामा परियोजना के तहत बनाए गए हैं। भारत ने 115 आवासों के निर्माण के लिए 45 करोड़ श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में एक पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों का दायित्व है। श्री चौहान ने राज्यों से दोषियों का लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शिवांशु शुक्ल और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी यात्रा कल शुरू होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये सभी अंतरिक्ष यात्री मंगलवार को दोपहर लगभग 3 बजे पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 14 दिन के मिशन पर है। वे इस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। इस यात्रा के दौरान ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने भारत से संबंधित 7 प्रयोग किए। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, गोवा, केरल, तटीय कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में भी 5 दिनों के दौरान तेज वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को अगले 3 दिनों के दौरान केरल और कर्नाटक के तटों, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज फिर से बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आने से पिछले कुछ दिनों से जारी उमस से लोगों को राहत मिली। विश्व मौसम विभाग संगठन ने कहा है कि रेत और धूल भरी आंधी से 150 से अधिक देशों के 33 करोड़ से अधिक लोग पीड़ित होते हैं। संगठन का कहना है कि वर्ष में लगभग 2 अरब टन धूल हवा में फैलती है और इससे स्वस्थ अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। 80% से अधिक धूल का स्रोत उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के रेगिस्तान है। संगठन के अनुसार पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में प्रतिवर्ष धूल संबंधी समस्याओं से निपटने पर 150 अरब डॉलर का कर्ज होता है। राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2034 को रेत और धूल भरी आंधी से निपटने के लिए कार्रवाई का दशक घोषित किया है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास आराकची ने कहा है कि यह पहले भी अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। कल कई देशों के राजदूतों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने ये गारंटी मांगी कि बातचीत दोबारा शुरू होने पर अमेरिका या उसके मित्र देश ईरान पर युद्ध नहीं थोपेंगे। श्री आराकची ने कहा कि इसराइल ईरान संघर्ष ने फिर साबित किया है कि कूटनीति और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इसराइल की मदद और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करके धोखा दिया है। श्री आराकची ने यह भी कहा कि बातचीत में यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन सहित परमाणु अधिकार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और यूरोपीय संघ से होने वाले आयात पर 30% शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह दर पहले अगस्त से प्रभावी होगी। श्री ट्रंप ने कहा कि व्यापार घाटा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। 27 सदस्य देशों वाले यूरोपीय संघ ने 30% शुल्क लगाए जाने की आलोचना की है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि इससे महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास बाधित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय संघ पहले अपने हितों की रक्षा करेगा। इस बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वान डे लेन ने कहा कि पहली अगस्त से पहले ही एक निष्पक्ष समझौता करने के प्रयास किए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मलोनी ने आगाह किया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार संघर्ष नुकसानदेह होगा। नीदरलैंड्स के कार्यवाहक प्रधानमंत्री डिक स्कूप ने नए शुल्क को चिंताजनक बताया जो दूरागामी हित में नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।